नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शेशेर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
Collaborate closely to maintain security, our long and uniquely open border.
सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेताओं ने भुजबल के आवास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। गाजा में इसराइल के हमले में दो महिलाओं सहित लगभग 7 फिलिस्तानी मारे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि काहिरा में हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। इसराइल की सेना के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गाजा के आधे से अधिक हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को वापस लेकर आई है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल में भी उन्होंने अपना दमखम बरकरार रखा। ब्लू टाइग्रेस ने एक यादगार जीत के साथ अपने अभियान का अंत किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।